नौवा विभावरी बीते ही डॉक्टर विवेकी राय ब्रैकेट में 1987 पृष्ठ संख्या 75 बबूल के उपरांत लोक प्राण श्वेत पत्र सोना माटी आदि डॉक्टर विवेकी राय के उपन्यास उपलब्ध होते हैं। विभावरी बीतेगी भी उनका ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया उपन्यास है। इसमें स्वराज की प्राप्ति के बाद रामराज की परिकल्पना के विफल होने की त्रासदी को लेखक ने दर्द के साथ उकेरा है। जहाँ तक नारी जीवन का प्रश्न है, इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश में दहेज की समस्या का ज्वलंत स्वरूप चित्रित किया गया है। उपन्यास में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ लड़कियों के विवाह के कारण माँ बाप को अपमानित होना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 76 यह दृश्य बड़े करुण हृदय द्रावक कचोटने और क्षुब्ध करने वाले हैं। यह कैसी विडंबना है कि हमारे देश के औसत मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी व्यक्ति की सारी शक्ति लड़कियों की शादी जैसी समस्याओं को निपटाने में चुक जाती है और उसी से वह टूट जाता है। दहेज की इस विकट समस्या के कारण ही बहुत से लोग परिवार में कन्या के जन्म को अवांछित और अनाहूत मानते हैं। दसवां अलग अलग वैतरणी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह 1968 डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा प्रणीत अलग अलग वैतरणी स्वातंत्र्योत्तर काल में ग्रामीण जीवन के मूल्यों के टूटने की छटपटाहट है। डॉक्टर रामदरस मिश्र के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वास्तव में यह टूटना जड़ता और अज्ञानता का टूटना नहीं है, मूल्यों और संबंधों का टूटना है, विवेक और संवेदनाओं का टूटना है, साथ ही साथ जमींदारी और जाति पाति का भी टूटना है। किंतु यह कितनी बड़ी विडंबना है कि बुरी चीजें टूटकर भी नहीं टूटी और अच्छी चीजें टूटने लगी तो फिर टूटती ही चली गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा डॉक्टर रामदरस मिश्र पृष्ठ संख्या 245। वस्तुतः इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र अपनी अपनी किसी वैतरणी को झेल रहा है। जयपाल सिंह, बुझारत सिंह, विपिन, देवनाथ, पुष्पी, कनिया, गोपाल, कल्पू, सुगनी, सूरज सिंह, मास्टर जवाहर सिंह, खलील चाचा, पटनहिया भाभी, जगन मिसिर, मास्टर शशिकांत, दुखन, झिनकू, घुरभिनवा जैसे अनेक लोगों के आंसुओं की वैतरणी उपन्यास में मिलती है। उपन्यास के नायक विपिन के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, करैता एक जीता जागता नरक है जिसमें वही आता है जिसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। चारों ओर कीचड़, बदबूदार नाबदान, गूमूत, बीमारियों के कुलबुलाते कीड़े, मच्छर, जहरीली मक्खियाँ, इसके बीच भुखमरी, डरावनी हड्डियों के ढांचे, किचरीली आँखों और बीमारी के फूले पेट वाले छोकरे, घरों में बंद गंदगी में आपाद मस्त डूबी औरतें जो एक दूसरे को खुलेआम चौराहे पर नंगियाने में ही सारा सुख और खुशी पाती है, धुंधवाते मन के अपाहिज जैसे नवयुवक जो अंधेरी बंद गलियों में बदफेली करने का मौका ढूंढते फिरते हैं, हारे थके प्रौढ़ जो न गृहस्थी के जुए को उतार पाते हैं न उसमें उत्साह जुट पाते हैं, मौत का इंतजार करते बूढ़े अपने ही बेटों बेटियों से उपेक्षित बिलबिलाते रहते हैं, यही है हमारी जन्मभूमि करैता ब्रैकेट में अलग अलग वैतरणी में निरूपित गांव इन्वर्टर कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ अलग अलग वैतरणी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह पृष्ठ संख्या 663 से 664 पैराग्राफ चेंज, परंतु अभी सब कुछ नाम से इस नहीं हुआ। डॉक्टर रामदरस मिश्र इस संदर्भ में संकेत देते हैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन, राग दरबारी के गांव में एक कोई मानसिक द्वंद शेष नहीं है, वह पक्के घड़े की तरह हरामीपन में पक गया है, किंतु अलग अलग वैतरणी का गांव अभी अधपका है, अर्थात अभी उसमें जड़ता और चेतना के होने और न होने, विवेक और अविवेक, नंगे यथार्थ और स्वप्न का द्वंद्व बाकी है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा डॉक्टर रामदरस मिश्र पृष्ठ संख्या 247। लेखक ने यहाँ कुछ ज्योतिर्बिंदुओं की खोज की है जिसमें जग्गन मिसिर, मास्टर शशिकांत, खलील चाचा, विपिन, देवनाथ, स्वरूप भगत, कन्हैया और पटनहिया भाभी आते हैं। गांव की सड़ियल स्थिति के कारण विपिन अपनी प्रेयसी पुष्पा से विवाह नहीं कर सकता। मनोभंग से दोनों का जीवन नरक हो जाता है। बुझारत सिंह की पत्नी कन्या एक सुसंस्कृत और विवेक संपन्न महिला है, पृष्ठ संख्या 77, परंतु वह अपने ससुर जयपाल तथा पति बुझारत सिंह के नालायकी भरे कारनामों से अत्यंत दुखी रहती है। सुगनी एक निम्न जाति की स्त्री है जिसके बुझारत सिंह और सरजू सिंह दोनों से अनैतिक संबंध है। गोपाल और कल्पू कुसंग की वैतरणी के शिकार हैं। शैशव काल से ही यौन विकृतियों का शिकार होने के कारण कल्पू प्राय नपुंसक सा बन गया है। दीपा ब्रैकेट में पटनहिया भाभी एक शिक्षित व संस्कारी लड़की है, परंतु उसे कल्पू जैसे नपुंसक एवं मानसिक रोगी के गले मर दी गई है। उसकी जिंदगी एक तड़प बनकर रह जाती है। यह तड़प या यौन क्षुधा उसमें भी मानसिक विकृति पैदा करती है, फलतः वह कई बार छोटे बच्चों को नंगा करके देखती है। हेडमास्टर जवाहर सिंह अपने ही विद्यार्थियों के साथ हम बिस्तर होते हैं। मास्टर शशिकांत एक आदर्श व्यक्ति हैं, तो पटनहिया भाभी से उनके संबंधों को जोड़कर उन्हें लांछित किया जाता है, फलतः दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। विपिन, देवनाथ आदि भी गांव छोड़कर चले जाते हैं। केवल जग्गन मिसिर और कन्या ही वे दीन मीन हैं जो गांव की नियति से जुड़े हुए हैं। गांव से लोग पहले भी जाते थे, परंतु वे जिन्हें काम नहीं मिलता था या जो जमींदार के जोरों जुल्म से ना हिम्मत हो जाते थे, परंतु इन्वर्टेड कॉमापन अब तो एक नए तरह का अनत गौन चल रहा है। यहाँ रहते हैं वे जो यहाँ रहना ही चाहते पर कहीं जा नहीं पाते। यहाँ से अब जाते वे हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं पर रह नहीं पाते। इन्वर्टेड कॉमाक्लोज संदर्भ ग्रंथ अलग अलग वैतरणी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह पृष्ठ संख्या 685। यह उपन्यास ग्रामीण परिवेश में नारी जीवन के विभिन्न कोणों को उकेरता है। 11वां सफेद मेमने मणि मधुकर 1971 पृष्ठ संख्या 77। मणि मधुकर द्वारा प्रणीत सफेद मेमने राजस्थान के बाड़मेर जिले नगिया, बराऊ, गाबासी जैसे ढापियों ब्रैकेट में छोटे छोटे गांव के बासिंदों की कथा है। उपन्यास की कथा जस्सू डाकिया, रामोतार ब्रैकेट में पोस्टमैन, रखे रामतौर का नौकर, डॉक्टर भानमल जानवरों का डॉक्टर, बन्नो रामतौर की पत्नी, सूरजा गावासी की एक जाटनी, जंतरी एक खानाबदोश औरत, रमणी जंतरी का पति, मीनिया जंतरी का लड़का जैसे पात्रों की अंतर व्यथा को पाठकों के सम्मुख उकेरती है। यह एक विषाद रस में डूबा हुआ उपन्यास है जहाँ एक नारी जीवन का सवाल है। इसमें बन्नो, सूरजा और जंतरी जैसी स्त्रियों के चरित्र उपलब्ध होते हैं। बन्नो रामतौर की पत्नी है। उसने अपनी मामी से 47 के दंगों की लोमहर्षक कथा सुनी थी कि किस प्रकार उसकी माँ की नंगी देह को 8-9 जनों ने रौंदा था और किस प्रकार उसके स्तनों की घुंडियाँ उतार ली थी, कैसे उसके कूल्हों के बीच में मिर्ची का चूरा भर दिया था। इन वर्णनों से बन्नों के भीतर की रसार्द्रता समाप्त हो चुकी थी, पुरुष के प्रति उसका आकर्षण समाप्त हो चुका था और उसका अस्तित्व मछली मरी हुई की प्रिया तथा सूरजमुखी अंधेरे की रत्ती की भांति हिमशिला में तब्दील हो चुका था। बन्नों की मामी एक ठंडी औरत थी, अतः अपनी भांजी की मनस्थिति का लाभ उठाते हुए उसे लिस्बियन बना देती है। रामतौर एक अधेड़ व्यक्ति है, अतः वह कभी बन्नों के इस ठंडेपन को दूर नहीं कर सकता। जिस प्रकार रत्ती का ठंडापन दिवाकर से टूटता है, उसी प्रकार बन्नों की यह हिमशिला भी संदों से टूटती है। पृष्ठ संख्या 78। संदो ज्वार का एक छटा हुआ बदमाश है। संभोग का वास्तविक आनंद बन्नों को संदो से ही प्राप्त होता है। बन्नों को संदो से गर्भ भी रहता है और वह उसके साथ पाकिस्तान भाग जाती है, जहां संदो कुछ ही दिनों में उससे ऊब कर एक दूसरी औरत को रखेल के रूप में घर में बिठा देता है। संदो रखे की नाजायज औलाद है और बन्नों की कोख में उसका गर्भ पल रहा है। इस प्रकार नाजायज संतानों की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। पैराग्राफ चेंज। सूरजा जाटनी इस उपन्यास की एक पानीदार चरित्र है। यहाँ लेखक ने बखूबी चित्रित किया है कि दो जातियों या कौमों के जहर में प्रतिशोध लेने का माध्यम स्त्री को ही बनाया जाता है। रामायण से लेकर वर्तमान युग तक में अपने इंतकाम की भड़ास निकालने के लिए स्त्रियों का ही उपयोग एक टूल के रूप में होता रहा है। बराऊ के ठाकुर और गाबसी के जाटों में पुश्तैनी शत्रुता चली आ रही है। ठाकुरों की ओर से संदो संदो सूरदा जाटनी को उठा लाता है और कई कई दिनों तक कई कई लोगों द्वारा उसका बलात्कार होता है। पर सूरजा सच्ची जाटनी है, वह संदों के सामने झुकती नहीं है। जस्सू की सच्चरित्रता से सूरजा प्रभावित होती है और वह उससे कहती है कि संदो उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता है, पर वह भी सच्ची जाटनी है। एक साथ 10 मर्दों को छेल सकती है और मुंह से सिसकारी तक निकालती नहीं। जो जस्सू सूरजा के कहने पर भी उससे संभोग नहीं करता, बाद में उसका ऐसा अधःपतन होता है। जंतरी नामक खानाबदोश औरत पर वह असफल बलात्कार प्रयास करता है। सूरजा को संदो पुलिस के हवाले करता है। वे उसकी और दुर्दशा करते हैं और अंततः वह डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में राजस्थान के दूर दराज के रेगिस्तान गांवों के जीवन को रूपायित किया गया है। 12वां राग दरबारी श्री लाल शुक्ल 1968 पृष्ठ संख्या 78। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक व्यंग्य उपन्यास है। अमेरिकन प्रेसिडेंट फिजरॉल्ड कैनेडी ने कहीं कहा था, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आर्ट कैन नॉट बी अ वेपन इन अ फ्री सोसाइटी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 10/10/1996। अर्थात मुक्त समाज में कला का प्रयोग हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए, बरक्स इससे कहा जा सकता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आर्ट इज द ओनली वेपन इन द करप्ट सोसाइटी। प्रस्तुत उपन्यास में स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को ग्रामीण जीवन के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया गया है। संपूर्ण उपन्यास में नारी की प्रत्यक्षतः चर्चा बहुत कम हुई है, परंतु अन्य पात्रों के कार्यकलापों और कथोपकथन में कुछ ऐसा व्यंजित जरूर हुआ है कि यह प्रतीत हुए बिना नहीं कि नारी क्रमशः अपनी इयत्ता खो रही है। उपन्यास की नायक या खलनायक वैद्य जी की पत्नी की चिता भी शांत नहीं हुई थी कि दूसरी स्त्री ब्याह लाए। उपन्यास में यह संकेतित हुआ है कि विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त और भी अनेक स्त्रियों से उनके अवैध संबंध रहे हैं। उपन्यास में गयाधीन की लड़की बेला का चरित्र आता है। वह अविवाहित स्थितियों को भोगने के लिए तैयार नहीं है। पृष्ठ संख्या 79। गांव के अनेक लोग उसके साथ बदफेली में चक्कर लगाते रहते हैं। सारे फिल्मी गीत उसने याद कर लिए हैं और वैद्य जी के सुपुत्र रूपन बाबू को वह इन फिल्मी गीतों की शैली में एक पत्र भी लिखती है। उपन्यास में लेखक ने बेला के संदर्भ में गरमाई हुई भैंस के प्रतीक को लिया है। उपन्यास में एक अन्य स्त्री पात्र वैद्य जी ज्वार के एक गरीब इंसान की पत्नी का है। वैद्य जी के दूसरे सुपुत्र बद्री पहलवान उससे इश्क करते हैं। एक बार विचित्र स्थितियों में वह व्यक्ति जब अपनी पत्नी और बद्री को देख लेता है, तब वह मारे डर और संकोच के वहां से खिसक जाता है। इस बात पर बद्री पहलवान को क्रोध आ जाता है और वे उसकी पिटाई कर देते हैं। इस पर लेखक की टिप्पणी है कि जो आदमी अपनी जोरू पर काबू नहीं रख पाता, वह जिंदगी भर बेचारा ही बना रहता है। बेला को देखने के लिए कुछ लोग आए हैं। यहाँ देखने वेखने की बात तो सामान्य है, मुख्य बात तो दहेज है। वर पक्ष वालों की तगड़ी रकम गया दिन से मिलने वाली थी, अतः लड़की को देखने की बात के प्रसंग में एक व्यक्ति कहता है, इन्वर्टेड कमापन, लड़की यदि पढ़ी लिखी है तो ठीक है और नहीं पढ़ी लिखी है तो और भी ठीक है, क्योंकि हमें उसे मास्टरनी तो बनाना नहीं है। और लड़की यदि सुंदर है तो ठीक है और नहीं सुंदर है तो और भी ठीक है, क्योंकि हमें उसे कोठे पर बिठाना नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल पृष्ठ संख्या 380। उपर्युक्त कथन में स्त्री के प्रति वितृष्णा झलकती है। हमारा समाज स्त्री को किस दृष्टि से देखता है, यह भी यहाँ व्यंग्यात्मक पैनी सूझबूझ के साथ व्यक्त हो गया है। उपन्यास का तीसरा स्त्री पात्र राधे श्याम काना की पत्नी का है। उपन्यास में उसका नाम तक नहीं है। गांव भर के लोग उसको कुतिया के नाम से जानते हैं। मूलतः वह कलकत्ता के एक चौकीदार की पत्नी थी, जिसे राधे श्याम काना भगाकर ले आया था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपन्यास में कोई भी पानीदार नारी पात्र नहीं है। 13वां, आधा गांव, डॉक्टर राही मासूम रजा, 1966, पृष्ठ संख्या 79। आधा गांव डॉक्टर राही मासूम रजा का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। रजा यदि और कुछ न लिखते तो भी इस एक उपन्यास से वे अमर हो जाते। उपन्यास की कोई पूर्व गुम्फित कहानी नहीं है। इसमें अनेक कहानियां और घटनाएं हैं जो लेखक के गंगौली में बीते हुए जीवन को बहुत ही सशक्त ढंग से आलेखित करती है। स्वयं डॉक्टर राही मासूम रजा के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमापेन, यह गंगौली में गुजरने वाले समय की कहानी है। कई बूढ़े मर गए, कई जवान बूढ़े हो गए, कई बच्चे जवान हो गए और कई बच्चे पैदा हो गए। यह उम्रों के इस हेर फेर में फंसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी है उन खंडहरों की जहाँ कभी मकान थे, और यह कहानी है उन मकानों की जो खंडहरों पर बनाए गए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आधा गांव, पृष्ठ संख्या 11-12। पैराग्राफ चेंज। यहाँ गंगौली गांव की कथा अनेक स्तरों पर चलती है। गंगौली नाम का यह गांव सिया और सुन्नियों में, सैयदों और जुलाहों में, उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी में, और यदि आसपास के पूर्वों को भी लें तो हिंदुओं और मुसलमानों में, छूतों और अछूतों में, और एक निश्चित सीमा तक जमींदारों और असामियों में बटा हुआ है। एक प्रकार से गंगौली की यह कथा व्यथा समूचे देश की कथा व्यथा है, जो विभाजन के बाद की त्रासदी को गहरे दर्द के साथ उकेरती है। पृष्ठ संख्या 80। किसी भी तरह यह गांव पूरा नहीं, यह देश भी पूरा नहीं, अतः पूरे उपन्यास में इस अधूरेपन की तड़पाहट को महसूस किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान का यह विभाजन देश के नक्शे पर खींची गई लकीर मात्र नहीं है, वस्तुतः यह लकीर देश की छाती पर खींची गई है, जिसने हिंदुओं को अधिक हिंदू और मुसलमानों को अधिक मुसलमान बना दिया है। यह सचमुच में कहा जाए तो हिंदुओं को खोटे हिंदू और मुसलमानों को अधिक खोटे मुसलमान बना दिया है। लेखक ने इस दर्द को तीव्रता के साथ अनुभव किया है। लिहाजा 3/4 उपन्यास के बाद पृष्ठ 303 पर लेखक ने एक छोटी सी भूमिका दी है, जो उसके दर्द को पूरी शक्ति के साथ व्यंजित करती है। यथा, इन्वर्टेड कॉमापेन, मैं सैयद मासूम रजा आबदी वल्द सैयद बसीर आबदी बहुत परेशान हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मगर यह कहना ही पड़ता है कि मैं गाजीपुरा का हूँ। गंगौली से मेरा अटूट संबंध है। वह एक गांव ही नहीं, वह मेरा घर भी है। घर यह शब्द दुनिया की हर बोली और भाषा में है, और हर बोली और भाषा में यह उसका सबसे खूबसूरत शब्द है। इसीलिए मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ, मैं गंगौली का हूँ, क्योंकि वह केवल एक गांव ही नहीं, क्योंकि वह मेरा घर भी है। कोई तलवार इतनी तेज नहीं होती कि वह इस क्योंकि को काट दे, और जब तक यह क्योंकि जिंदा है, मैं सैयद मासूम रजा आबदी गाजीपुर का ही रहूंगा, चाहे मेरे दादा कहीं के रहे हों। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आधा गांव, पृष्ठ संख्या 303 से 305। पैराग्राफ चेंज। इसमें परंपरागत सामंती और जमींदारी मूल्यों के तहत मुस्लिम समाज में नारियों के जीवन के चित्र भी आए हैं, और व्यवस्था के चरमराने पर जो सामाजिक स्थिति बनती है, उसमें नारी जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसे भी लेखक ने रेखांकित किया है। कुलसुम, सईदा, कामिला, जंगटिया बो जैसी नारी यहाँ है। निम्न जातियों की बहु बेटियों के भी चरित्र आए हैं। फुन्नमिया अपनी बीवी कुलसुम को मारते पीटते हैं, पर पर प्यार भी उतना ही करते हैं। अब्बू मियाँ की बेटी सईदा अलीगढ़ में पढ़ने जाती है और बाद में ऊंची डिग्री हासिल करके नौकरी भी कर लेती है। परिवर्तित परिस्थितियों में अब्बू मियाँ को अब सईदा का पढ़ना और नौकरी करना बुरा नहीं लगता। बेटी के पैसे वे नहीं लेते, पर उसके द्वारा खरीदी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक जमाने में बड़े जमींदार फुस मियाँ जूतों की दुकान खोल लेते हैं। दागी हड्डी वाले जवाद मियाँ का बेटा कमालुद्दीन अब डॉक्टर बन गया है और दो सैयद जादे उसके नीचे नौकरी करते हैं और बात बेबात उसकी डांट खाते रहते हैं। हुसैन मियाँ की लड़की कोमिला से रहमत जुलाहा का लड़का बरकत, जो अलीगढ़ में पढ़ता है, इश्क फरमाता है। पहले ऊंची जाति के सैयद जादे निम्न जाति की स्त्रियों पर हाथ साफ करते थे, अब जब स्थिति बदल गई है तो तिलमिलाने लगते हैं। फुन्नन मियाँ हुसैन अली मियाँ को बिल्कुल ठीक कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा अपन, जब जमींदारियां रही तब तू कौनो जोर जबरदस्ती न किए रहे हो, काई हमें नामालूम कि तू रहमतवा की बहन से फंसे रहे हो। तू जमींदार न रहे होत्यो तो का वो तेरी बहनिया न देता। कल तोरा बखत रहा, आज बरकतवा का वक़्त है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आधा गांव, पृष्ठ संख्या 352। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में ग्रामीण परिवेश के मुस्लिम समाज का, उनके त्योहारों और उनकी मान्यताओं का, मुहर्रम की मजलिसों का, उसमें गाए जाने वाले नौहों का यथार्थ चित्रण मिलता है। मुस्लिम समाज में नारी जीवन को लेकर जो बदलाव आया है उसे भी यहाँ देखा जा सकता है।